आयत 142, अमहसिब तुम, क्या तुमने गुमान किया? सोचिए जरा अपने ऊपर लें, व्हाट डू यू थिंक? क्या तुम्हारा ये कंसर्न है, तुम्हारी ये इसको सोच है, क्या तुम ये कर रहे हो? क्या अंतदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे? वलम यालमिल्लाहुल्लजीन जाहदू मिनकुम, और जबकि अल्लाह ने भी जाना ही नहीं, देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वाकयतन अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। वयालमस्साबिरीन, और सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा करने वाले कौन है? यह है वो जिसको आप कह सकते हैं कि बीच के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो तुम्हारे लिए इस रास्ते में कड़ी से कड़ी मंजिलें आने वाली हैं। देखिए आयत 214 सूरत अल बकरा में भी हम ऐसी ही आयत पढ़ चुके, और यहाँ आयत देख लीजिए 142, सिर्फ तरतीब फर्क है। 214 और 142 को उलट पुलट करके देखें तो फिगर्स 2, 1 और 4 ही हैं। ये खूबसूरत इम्तिजाज होता है सूरतों में, जो गौर व फिक्र से निकल आता है। तो गोया कि ये कह दिया कि जन्नत की तलब है, जन्नत की ख्वाहिश है, तो फिर तुम्हें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही तुमने सोचा कि ये सब कुछ होगा? ये मुगालता है। लोग क्या सोचते हैं कि अल्लाह को पता ही नहीं चलता कौन कितने कहले पर का है, कौन जिहाद करने वाला है, कौन सब्र करता है। या अल्लाह तआला बताता है कि एक डेसिमल के मुताबिक भी चोट पड़ती है ना दूसरे की निस्बत ज्यादा, तो मुझे उसका भी पता है। तुम्हारी सलाहियतें कम है, तुम ज्यादा मेहनत करके तर्जमा याद करते हो। किसी टीचर, किसी एग्जामिनर, पेपर चेकर को नहीं पता चलता, अल्लाह को पता लग जाता है। रहमत दिलाई जा रही है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी वुस्सतों के मुताबिक नवाजेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तुम्हें मौका देता है। ये तुम्हारे जन्नत के रास्ते के माइलेज स्टोन्स हैं। जितनी मुश्किलें आएंगी उतनी तुम्हारे लिए खैर है, और जन्नत आसान नहीं है। अला इन्नसिलतल्लाहियल्गालिया, आपने फरमाया लोगों जन्नत को छोटी चीज़ है, अल्लाह का सिला बड़ा कीमती है। ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप में से किसी को डायमंड का शौक हो और चाहे कि उसको आर्टिफिशियल जरकन की कीमत पे मिल जाए, फिर नकली तो होगा या चोरी का होगा, और जन्नत ना नकली है ना चोरी की है, असली है, प्योर है, ब्रांडेड है। तो ये आराम से नहीं मिलेगी, ये सो सो कर और खा खा कर नहीं मिलेगी, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, और जो कुर्बानियाँ नहीं दे सकते वो अल्लाह के काम के नहीं रहते। ऐसे लोगों को अल्लाह बताता है कि जन्नत में जाना है तो सब्र और जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद क्या है? मशक्कत और मेहनत, अपने आप के साथ जिहाद। उठो फजर के वक्त, मत सो उसके बाद, सो गए तो फिर मसला होगा। उम्मीद है कि कल वाली एक्टिविटी पे आज आप लोगों ने अमल किया होगा। कुछ फर्क महसूस होता है आपको? यकीन करें आप करके देखिए, आपको इसमें दिन ब दिन अपनी सलाहियतें उभरती हुई दिखेंगी, और आम हालात में पता भी नहीं चलता। असल पता ही तब चलता जब मुश्किल हो। जब आज हम आए तो पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी की तो बहुत तेज बारिश थी, तो मेरे दिल की गहराई से उस वक्त आप सबके लिए दुआ निकली कि अल्लाह ताला अंधेरा भी लग रहा है, बारिश भी है, हो सकता है सुस्ती आ जाए, हो सकता है शैतान मुश्किल में डाल दे, चलो आज वेदर ठीक नहीं। और जो बेड में क्विल्ट के अंदर ही सेलफोन से वेदर चेक कर लेते हैं, फिर उठने की हिम्मत भी नहीं करते। अगर आपने वेदर देखना भी है ना, तो नहा धो के कपड़े पहन के फिर बाहर आके चेक करें। हम अंदर बैठ के चेक कर लेंगे, वो अच्छा फिसलन है, फिर खुद को मुश्किल में ना डालो, चलो हम नहीं जाते। तो याद रखिए, हम हसिब तुम अंतदखुलुल जन्ना। अच्छे हालात में तो लोग भी सेहतमंद रहते हैं, लेकिन जो ही हालात बदलते हैं, आप देखिए मौसम बदले तो एक हमारे यहाँ मारूफ जुमला, जो गलत है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन जब नज़ला जुकाम खांसी हो तो कहते हैं वो मौसम बदल रहा है ना, ये बच्चे को ठंड लग गई है, इसको गर्मी लग गई है, कहते हैं ना। तो जब हालात बदलते हैं ना तो बीमारियां शुरू होती हैं। इसी तरह जब दीन के रास्ते में हालात चेंज होते हैं तो फिर भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है। जिसको दीन का कोई काम मुश्किल लगे, समझ लीजिए कि अंदर निफाक का मरज सर उभार रहा है। मुश्किल लग रहा है, कॉम्प्रोमाइजिंग, छोड़ो, अच्छा नहीं। और कभी शैतान आपको ये नहीं कहेगा छोड़ दो, इतना बेवकूफ़ वो बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अक्लमंद है, तभी तो इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। कभी नहीं आपसे कहेगा आप कोर्स छोड़ दें, कभी नहीं आपको कहेगा नमाज छोड़ दें। वो आपका प्यारा बन के अंदर से ऐसी खूबसूरत बात करेगा, आपको लगेगा बस 100 लोगों में से मुझे ही समझ आई है ये बात। हाउ जीनियस आई एम, ये इतने होशियारी के साथ इंसान का मामला करता है। देखिए अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को साथ लेकर गया, बेवकूफ थे, पागल थे, अकलमंद लोग थे। 5 वक्त नबी सल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे जमात में। हैरत की बात, देखिए वो जमात में पढ़ सकते थे, लेकिन अगर ओहद की ये दावत ना मिलती और ऐन शौत के मुकाम पे ये 300 लोग पलटते ना, तो किसको पता चलना था कम्युनिटी में कि ये मुनाफिक है? कब पता चला अब्दुल्ला बिन उबई के निफाक का? जब मैदान जंग में डाला गया। और अगर आखिरी जंग तबूक में जाके वो खराबियां पैदा ना करता तो पता ही नहीं चलना था कि इस बंदे के दिल में नबी के लिए ग्रज कितना है। तो हमेशा मुश्किल हालात जब आए तो क्या सोचा करें, बस ये मेरा एसिड टेस्ट है, अगर यहाँ से फिसल गई ना तो बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल आप इसको सोचेंगे जैसे आपने कभी ब्लड प्रेशर चेक किया या कराया हो, ऐसी शौकिया कभी वो मशीन के साथ चेक करके देखें आप, वो जब प्रेस करते ना तो क्या फील होता है कि बस अब तो चीखें निकल जाएंगी। इतना स्ट्रेस पड़ता है वेंस के ऊपर कि बंदा बर्दाश्त नहीं, और जब बिल्कुल आखिरी हद होती है तो रिलैक्स, फिर रिलीज, फिर वो आपका प्रेशर चेक, वो यही चेक करते हैं ना कि आपका ब्लड कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। तो इसी तरह जब दीन का कोई काम मुश्किल लगे, कहा करे मेरा ब्लड प्रेशर चेक क्यों हो रहा है कि मैं इस रास्ते में कितनी हूँ, तो क्या दुआ करें कि अल्लाह इस रास्ते में मुश्किल ना आए, ये कभी ना करें। ये कहें कि अल्लाह अगर मुश्किलात आए तो दीन में इस्तकामत देना, कायम रखना, क्योंकि मैंने जन्नत में जाना है। जिनकी जितनी बुलंद दर्जे होने हैं ना उतनी आजमाइशें ज्यादा हैं। आप सोचे कि ईमान और आजमाइश तराजू के दो पलड़े हैं, बैलेंस होते हैं ना, जितना ईमान बढ़ता जाएगा ना आपका उतनी आजमाइशें बढ़ती जाएंगी। एक शख्स ने एक मौके पर अल्लाह के नबी को आके कहा, अल्लाह के नबी आई लव यू, कितना आसान है, जुबान हिलाते हैं रब भी कह देते हैं आई लव यू। आपने उसको इग्नोर किया, दोबारा कहा, तो 3 बार जब उस शख्स ने कहा अल्लाह के नबी मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, तो आपने कहा अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो याद रखना तुम पर मुसीबतें यूं टूटेंगी जैसे तस्बी की डोरी खोल दे या कोई रस्सी खोल दे मोतियों की, तो एक दाने पे दूसरा दाना गिरता है। अम हसिब तुम सोचो, अल्लाह देखना चाहता है, परखना चाहता है तुम क्या करते हो। आप देखिए कि आप नहीं परखते क्या लोगों को? एक रिश्ता करना होता है तो आप कितना परखते हैं, कैसे हैं, कौन है, धोखा तो नहीं हो रहा, झूठ तो नहीं बोल रहे। कोई जॉब करनी करानी हो कितना सोचते हैं, तो क्या अल्लाह अपना काम ऐसे ही दे देगा? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक कॉल मंसूब किया जाता है, कहा करते थे लोगों तुम एक कच्चा घड़ा खरीदते हो, मिट्टी का घड़ा, तो ठोक के देखते हो। कभी आपने मिट्टी का बर्तन लिया ना तो लोग ऐसे टिक टिक करके देखते हैं कि उसके अंदर कोई दराड़ है, खोल है। तो कहते थे कि तुम एक घड़ा खरीदते हो तो ठोक बजा कर देखते हो कि कहीं छेद तो नहीं, कहीं सुराख तो नहीं, तो क्या मेरा रब मुझे ठोक बजा कर नहीं देखेगा? क्या तुम्हें नहीं पता? इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि ये जन्नत तो मिलनी है। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लोगों को भी रुलाते हो, खुद भी रोते हो, लेकिन जब मैदान जंग में जाओगे तो पता चलेगा कि तुम कितने पानी में थे। अब इसके बाद अल्लाह ताला उस गिरोह को मुखातिब करता है जिनका मशवरा था कि शहर से बाहर जाकर जंग लड़ी जाए। आयत 143, वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ली अन तलक़ौहु, और तुम तो मौत की तमन्ना कर रहे थे इससे पहले कि इससे मुलाकात होती। फ़कद रअयतुमूहु, चलो अब तो तुमने उसको देख ही लिया। वान तुम तंजुरून, और तुम देख रहे हो, यानी अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया इसको। ये है यंगस्टर्स गिरोह, यंग जवान खून, जिनका मशवरा था कि हम बैठ के नहीं करते, हम चलते हैं आगे, इनिशिएटिव। अल्लाह कहते हैं अब बताओ क्या हो गया इनके जज्बात पे, कि देखो जोशे किताल में और जौके शहादत में तो बहुत आगे थे, अब जब मौत को आगे से देख लिया अब पीछे पलटते हो कि नहीं। वो एक आपने सुनी हुई है ना बात के कोई खुदकुशी भी करने गया, कहते हैं कि मरने को तो है लेकिन सुना है कि लोग जान से मार देते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं ना। बातें करना बहुत आसान है, बाज कोई लैला की मोहब्बत में तेरे लिए आसमान के सितारे तोड़ दूं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कहना चलो जाओ इसके साथ कब्र में, फिर देखिए मोहब्बत कितनी रहती है। तो बातें करना, बड़के मारना, ये बहुत आसान होता है। असल बात क्या है कि किरदार का गाजी बन के दिखाओ, गुफ्तार का क्या करना है। उलामा इकबाल भी कहते हैं ना कि ये इकबाल बड़ा पापी है, मन बातों में मोह लेता है। बातें तो बड़ी खूबसूरत लोग करते हैं, बैठ के घंटों भी कर लें कोई नहीं थकता, लेकिन जब साथ चलना पड़ता है, उन रास्तों से गुजरना पड़ता है जिसमें नफ्स के मुजाहदे हों, जिसमें नफ्स पे काबू पड़ना हो, तो फिर मसला होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं आज किधर कहीं वो तमन्ना है। एक ऐसी मुझे याद आ गई बच्ची कि जिसकी ख्वाहिश पे हमने अपनी क्लास शुरू की थी, और इतनी एक्साइटेड थी वो दौरे कुरान के दौरान कि जिसकी को हद नहीं है कि आप मेरे कहने पे करें, मैं 10-11 बच्चियां लेके आऊंगी, आप क्लास शुरू करें, वीकडेज पे नहीं वीकेंड पे कर लें, हम आएंगे। ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, ना हमारी तैयारी, जैसे यहाँ हालात है वैसे ही वहाँ भी हालात थे शुरू में, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। हमने कहा कर लेते हैं उन्हीं में से साथियों में, जैसे आप में से चंद लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन दे के वीकेंड क्लास शुरू की। वो दिन और आज का दिन, वो 11 बच्चियाँ कोई नहीं आई, और अल्लाह ने उस पता नहीं 100 के करीब और बच्चियों को भेज दिया जिनका हमारे वहम और गुमान में भी नहीं था। तो कुछ लोगों का नसीब सिर्फ बस दाना डालना होता है, उनके कहने पे बंदा काम शुरू कर लेता है, लेकिन असल बात यह कि करके दिखाओ। हम सब भी तो इस वक्त पढ़ रहे हैं ना, ये जो कुछ आप पढ़ रहे होते हैं ना इस वक्त, मुझे 100% यकीन है कि आपके दिलों में बहुत मद्दोजजर होता होगा, उभार, जोश, कुछ करना है। फौरन अपने नोट्स के कोने में लिख लिया करें, मैंने इंशाल्लाह जिंदगी में ये करना है, मेरा ये इरादा है, अल्लाह मुझे मौका देना, मैंने इस कोर्स के बाद ये करना है, मैंने इसके आगे करना है। अपनी छोटी छोटी नीयतें खुफिया सी कोड वर्ड्स में लिख जरूर लें, क्योंकि आपने ये नोट्स दोबारा पढ़ने हैं बहुत दफा इंशाल्लाह ताला। तो आप जब वो पढ़ेंगे ना, तो फिर आपका खून गर्म होगा, वरना जो इस वक्त पहली दफा आपके लिए दिलों में उभार आते हैं ना, वो दूसरी दफा कोई नहीं आने। अब तो हर चीज एक डिस्कवरी लगती है ना, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम कहते हैं हाँ 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 ये पहले सुनी थी बात, हाँ बातें नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने कहे पे अमल करने वाला बनाए। यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत बात पता चली, और वो क्या कि अगर जिंदगी में कभी नेकी का एक मौका चला जाए तो दोबारा भी आ जाता है, जो छूट गया जो ही दोबारा मौका मिले उसको अवेल कर लो, फौरन ले लो। बाज दफा हम पिछली जिंदगी के चांसेस को रोते रहते हैं, हाय चांस मिला था हमने लूज कर दिया, तो ना एक और ले लो। आप देखिए हर साल आपके सेले लगती हैं, क्यूपन्स भी आते हैं, क्या हुआ जो चला गया उसको छोड़ो, और अब अगले मौके पे देखो तो फिर पता चलेगा कि तुम क्या करके आए हो। और असल बात यह है कि अपने आप को मायूसियों से रोको। यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट पोर्शन सबक का पूरा हुआ कि जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला तसलियां भी उनको देते हैं, तज़किया भी हो रहा है, मोरल उनका अब किया जा रहा है। अब आगे की बात का ताल्लुक खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। अल्लाह ताला इसमें हम सबको बहुत कुछ बताते हैं। खुलासा आपको पीछे बताया जा चुका कि हालात क्या थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में जब टीला छोड़ा लोगों ने, खौफ व खिराज फैल गया। एक शख्स था इब्ने कुमा, इब्न और कुमा, काफ मीम हा, इसने पत्थर मारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक जख्मी हो गया, और आपके खौद, ये जो सर की टोपी होती है, उसकी कड़ियां आपके रुखसार यानी चिक्स के अंदर फंस गई, खून बहने लगा। साथ ही अफवाह फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस खबर के फैलने की देर थी कि मुसलमानों के औसान खता हो गए, मुसलमानों ने होप छोड़ दी। वो साथी जो अभी तक एक ही महाज पर लड़ रहे थे, सब एक झंडे के नीचे थे इस्लाम के नाम पे, उनके मुख्तलिफ गिरोह बन गए। नंबर एक, कमजोर ईमान वाले, कहने लगे काश अब्दुल्ला बिन उबई और अबू सुफियान से जाकर अमान तलब कर ले। ये देखिए सबसे कमजोर ईमान शख्स मुसलमान वो होता है, जरा मुसीबत आई नॉन मुस्लिम से जाके एड ले लेते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। इन्होंने कहा हम इनसे अमान तलब करते हैं। एक दूसरा गिरोह था मुनाफिक, उन्होंने क्या कहा, प्रोपीगंडा शुरू कर दिया, हाँ जी अगर सच्चे नबी होते तो शहीद कैसे होते, देखो वो कैसा नबी है जो खुद शहीद हो गया, तो अब हम क्या करें, और ये दीन तो सच्चा ही नहीं, चलो वापस चलते हैं पिछले दीन पे। ये दूसरा गिरोह था, पहले तो दुआ कर लीजिए कि अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, और याद रखिए कि जहां जिंदगी में बम्स आते हैं ना, मुश्किल आती हैं, तो ऐसे गिरोह बहुत कसीर होते हैं, हौसले तोड़ने वाले भी और खुद भी टूटे हुए। हम चाहते हैं हम नेकी करें और उधर से पोस्टमैन आ जाए और एक खूबसूरत सा लेटर जिसमें दुनिया और आखिरत की सारी बिशारतें दे दे, चूंकि तुमने ये नेकी किया देखो जन्नत का भी तुम्हारे नाम पे आ गया एक अलॉटमेंट लेटर, और ये और वो। तो ये दो गिरोह तो थे छोड़ देने, एक तीसरा गिरोह था बड़े हौसलों वाला जानबाज, ہر حال میں ڈٹنے والے۔ انہی میں ایک انس بن نظر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، لوگ کمزور ہو رہے ہیں، ان کا مورائل ڈاؤن ہو رہا ہے، بالکل آپ ایسے سمجھے کہ جیسے آج لوکل چھٹی ہو یا کل لوکل چھٹی ہے، سارے بچے گھر والے سب گھر میں ہیں، بلکہ کوئی فنکشن ہی ہو رہا ہے اور آپ کو کلاس کے لیے بلا لیا جائے، تو کچھ تو کہیں گے جاتے ہی نہیں، کچھ کہیں گے لیٹ جاتے ہیں، لیکن ایک تیسرا گروہ وہ کہتا کیوں بھائی، خوشی کے موقع پہ ہم کیوں نہ جائیں، دس اینڈ دیٹ۔ یہ انس بن نظر ان میں سے تھے۔ جب دیکھا کہ لوگ ذرا کچی کچی باتیں کریں نا، جیسے کبھی کبھی آپ لوگ بھی تو بول پڑتے ہیں نا آپس میں، میں نہیں جب ہوتی تو جب آپ کے ساتھی کچھ آپ سے مشورہ کرتے ہیں، ذرا ادھر سے ادھر ہوئے، آپ کہتے ہیں ہماری بھی چھٹی، چاہے ہم کسی بھی بڑے لیول پہ بھی ہے نا، تو ہم چھٹی کو بڑا پسند کرتے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ سب بھی تو جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بھی تو درجے ہیں نا مختلف، کچھ آپ میں سے گروپ لیڈرز ہیں، کچھ سٹاف میں بھی کام کرتے ہیں، کچھ سیدھے ہیں، کچھ نئے لوگ ہیں، تو سب کا رویہ فرق ہونا چاہیے ہر چیز میں، اگر آپ کو آگے آنا ہے تو آپ کو ہر چیز میں آگے آنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ذرا سے بندہ ادھر سے ادھر جب ہوتا ہے نا، نبی ایک لیڈر تھے، ادھر ادھر ہوئے، صحابہ اپنے اصل پہ آ گئے، درجے تھے، کفر پہ کوئی نہیں تھا، نفاق پہ نہیں، لیکن کچا ایمان تھا، نیا ایمان تھا، لیکن انس بن نظر جیسے صحابہ جو پرانے ٹھکے ہوئے لوگ تھے، اور ایک ایسا بندہ ٹھک جائے، واللہ کئیوں کو جما لیتا ہے۔ یہ بالکل آپ یوں سوچے کہ آپ کو بھینس باندھنی ہے، تو زمین میں ایک پہلے کیل ٹھوکیں گے جو خود مضبوط ہوگا، اگر وہ کیل جو موٹا سا آپ نے ٹھوک دیا ہے خود مضبوط ہے، آپ اس کے ساتھ چار بھینسیں باندھیں، اور اگر وہ کیل ہی ڈھیلا ڈھالا ہے تو بھینس چھوڑیے، بکری باندھے، بکری یوں گردن مارے گی، کیل سمیت بھاگ جائے گی۔ تو اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ٹھکنا پڑے گا۔ ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے، جو مقام مجھے اللہ دیتا ہے کیا میں اس کا حق ادا کرتی ہوں، کیا میں اس کے اوپر آتی ہوں، ڈیزرو کرتی ہوں اس کو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی بھی چھٹی تو ہماری بھی چھٹی، سب چلے جائیں، سب کچھ نہیں، اب ہم نہیں کر سکتے کچھ چکرا۔ تو یہی ہوا، حضرت انس بن نظر نے لوگوں کو جمع کیا، للکارا، او لوگو آؤ، جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دے دی، ہم بھی اپنے سر پھر اسی پہ قربان کر دیں۔ اب ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، ہمارا تو نبی نہیں رہا، اتنی باتیں کر کے لوگوں کا مورائل بلند کیا اور جا کے بے دردی سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ اتنے زخم آئے تھے ان کے جسم پہ، کفار نے مسلح کیا کہ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا تھا، چوک کیا تھا ان کو دشمنوں نے، کہتے تھے ہم نے جی کے کیا کرنا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ تو ایسے وقت میں جب لوگ کمزور پڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وما محمد، او لوگو محمد تو کچھ بھی نہیں، محمد کی کیا حیثیت ہے، الا رسول، وہ تو ایک رسول ہے بس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، بس وہ ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، یعنی یہ ایک چلتا آیا سلسلہ، رسول تھے، نبی تھے، لیڈر تھے، مربی تھے، مزکی تھے، ایمبیشیس تھے، سارا کچھ تھے، لیکن انسان تھے۔ اف ام مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہاں ایڑیوں کے بل لوٹنے سے کیا مراد ہے، ریئل میں کیا آپ اپنے اینکل کے بل، نہیں، محاورہ، یعنی دین سے پلٹ جاؤ گے، اس کام کو چھوڑ دو گے، تو چلو جاؤ پھر چھوڑ دو۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا، لیکن یہ اللہ کو پتہ کہ سارے کو نہیں پھریں گے، لہٰذا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ یہ ہے وہ آیات کہ جو نازل ہوئی اور ان کی اصل تعبیر 7.5 سال بعد ہوئی۔ غزوہ احد کے میدان میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیل گئی، ریومر پھیل گئی، لوگ پریشان ہوئے، دکھی ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکے جذباتی تھے، ایموشنل تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حوصلہ چھوڑ دیا۔ یہی کیفیت ان کی میدان احد میں بھی ہوئی، اس طرح سے تلوار پھینکی اور کہنے لگے اب ہم نے جنگ کر کے کیا کرنا ہے، اب تو بس نبی چلا گیا، اب ان کے بعد ہمارا جینا اور کیا کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا کام نبی کے لیے تھا؟ کیا تم نبی کو دکھانا چاہتے تھے؟ کمزور انسان کو دکھانا چاہتے تھے؟ تو جاؤ پھر، پھر تمہارا کام تو ختم. ٹھیک 7.5 سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی انتقال ہوا، سن 10 ہجری میں، تو سیم یہی کیفیت حضرت عمر کی اس وقت ہوئی. جب خبر ملی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، تلوار پکڑ لی، کہنے لگے آج جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کا سر اڑا دوں گا. ایسے وقت میں بہت بڑا فتنہ اٹھ سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیے کیسے وقت میں کمزور سا ابو بکر اٹھتا ہے. ابو بکر جسمانی طور پہ بہت کمزور تھے، چلتے تھے تو جھولتے تھے اس طرح، لیکن ایمان کی پختگی تھی کہ وہ کمزور انسان بھی بہت بڑوں کو سنبھال لیتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اندر ایمان ہوتا ہے نا تو جسہ کمزور ہو جاتا ہے. اور ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے، فوراً سیدھے گئے اپنی بیٹی کے پاس، حضرت عائشہ کے حجرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چادر تھی، آپ نے چادر ہٹائی، چھکے، اللہ کے نبی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور رو پڑے، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. یعنی آپ کو موت آ چکی، آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ زندہ ہوں اور پھر مرے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل چکی. پھر باہر آئے، لوگوں کو جمع کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر تھوڑے سے اگریسو تھے. پھر ابو بکر صدیق نے ممبر پہ آ کے بات کی، من کان یعبد محمدن، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو خوب سن لے، فإن محمدن قد مات، کہ بے شک محمد تو فوت ہو چکے. ہاں ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ہاں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی فوت نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہی آیت ابو بکر کی زبان میں تھی کہ وما محمد الا رسول، محمد رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اس کے بعد عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. یہ ایک قسم کی ریہرسل کروائی گئی تھی صحابہ کی. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بڑے ہم سے چلے جائیں گے. ماں باپ، آپ کبھی بچپن میں 7-8-10 سال کی لڑک پن کی اور جو بھول پن کی عمر ہوتی ہے اس میں ذرا بچوں سے پوچھئے، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ماں باپ چلے جائیں گے. آج کل کے بچے کافی بولڈ ہیں ویسے، منہ سے کہہ دیتے ہیں اگر امی اف یو ڈائے، ابو اف یو ڈائے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دور میں یہ زبان پہ لفظ بھی نہیں آتے تھے، آج تک نہیں آتے، یقین کریں. سب حقیقت ہے، مان لو دل سے خوش اطمینان، لیکن لفظ نہیں یہ منہ پہ آتا کہ ہمارے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا، نیور، دل ہی نہیں کرتا بولنے کو یہ لفظ. لیکن آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی بالکل بچوں کو چھوڑ کر ماں باپ چلے جاتے ہیں بچپن میں، کوئی کبھی کسی کے سہارے پہ نہ رہے. خاص طور پہ یہاں جو میسج ہے وہ کیا ہے کہ جس کو تو مقصد پیارا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہی کلمت اللہ ہی العلیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. کیوں غزوہ احد لڑی گئی؟ کوئی جنگ کرنے کا شوق تھا؟ کوئی تلوار جمع کرنے گئے، تیر لینے گئے؟ نہیں، مقصد کیا تھا؟ کہ کفار کو آنے نہیں دینا، مدینہ کا تحفظ، مسلمانوں کا تحفظ. تو کیا یہ نبی کے لیے تھا؟ نہیں، اللہ کے لیے تھا. یہاں سے ہم سب اپنی کوششوں کا قبلہ درست کر لیتے ہیں. دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. ہم کیا سوچتے ہیں ہماری سوچ کے مطابق ہوگا. مثال ہے ماں باپ ہے، ایک فلموں کو دیکھ دیکھ کے ہمارے ذہن میں ایک وہ ڈرامیٹک سٹائل چل رہا ہے کہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے بچہ، پیدا ہوا، پھر ماں باپ نے اس کو پالا بڑا، پھر باپ باپ بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، پھر بچے کی شادی ہو گئی، پھر پوتے کو کھلایا، پھر ہم سوچتے ہیں جب پوتے نواسے ہوں گے پھر ایک دم ابا جی کا انتقال ہو جائے گا، ہم کہیں گے چلو جی اللہ نے ان کو بہت کچھ دکھا دیا. ڈرامیٹیکلی تو ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ کھا پی کے پوتوں نواسوں کو خوش کر کے پھر مریں گے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نہ ہو، میں نے تو دیکھا بہت دفعہ، جوان ماں باپ बिल्कुल गोद के बच्चों को छोड़ के मर गए। मुझे आज भी वो 2 साल की बच्ची याद आती है कि जब उसकी माँ का जनाजा उठा तो वो बच्ची, हालांकि उसको होश कोई नहीं थी, समझ कोई नहीं, 1 साल की या 1.5 साल की बच्ची थी, लेकिन वो बेचैन थी, वो रो रही थी, अंदर बिस्तर पे थी और वो ऐसे रो रो के उठ उठ के बेचैन थी। वो छोटे छोटे बच्चे भी याद आते हैं कि जो बाप की जब डेड बॉडी उठाई तो उनकी चारपाई के साथ लटक गए, वक्त ने सारे जख्म भर दिए। आज वो बच्चे भी जवान होके पल पल आ गए अपने अपने कामों पे। कोई हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरह हमारी जाती जिंदगी में माँ बाप हमेशा नहीं रहते और उनके काम चल जाते हैं ना, इसी तरह दीन के काम सिर्फ वही बंदा करेगा जो अपने लिए करता है। गाइडलाइन मिल जाए, मकसद एक हो, तरीका एक हो, तो फिर काम चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी साथी काम करते हैं, कभी जा जाके पलट पलट के एक एक चीज नहीं देखी, लेकिन जब भी कोई बात करें क्या करें तो एक बात कहते हैं कि जब कभी कोई रابطہ ना हो तो एक बात खुद से पूछ लें कि जो काम करने लगे हैं इसमें दीन का फायदा है कि नहीं। बस अगर सही लगता है सब साथी मशवरे के साथ वो काम कर लें। गलतियां भी करते हैं, हर एक से होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी, सबसे होती हैं, लेकिन मकसद प्यारा होना चाहिए। जब लोग शख्सियात के पीछे आते हैं ना तो अपना दीन भी जाया कर देते हैं, और इसका ऑपोजिट भी एक एंगल होता है। एक तो है कि नबी चले गए तो उनकी जरूरत महसूस हो रही है, और एक ऑपोजिट बदबख्ती की भी बात है कि मौजूद है नबी, माँ बाप, लीडर मौजूद है, पूछने की कोई जरूरत ही नहीं करता, खुद ही फैसले करने को पसंद करते हैं। ये भी एक हलाकत की बात है। जैसे माँ बाप हों और बच्चे खुद ही आप खुदरे बने हो, तो ये दोनों एक्सट्रीम है। अल्लाह ताला कहते हैं नबी का काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था, वो दे दिया। हम कहते हैं कि जब सूरत नसर नाजिल हुई, इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। लोगों ने कहा अबू बकर इसमें तो इतनी खुशखबरी है कि भाई अल्लाह ने नबी को मदद की, लोगों तक पैगाम गया, अब तो लोग फौज दर फौज आ रहे हैं, तो आप क्यों रोए? तो अबू बकर ने कहा कि इसलिए कि जब काम पूरा हो जाता है तो जाने का वक्त आ जाता है, ये नबी की वफात की खबर है। भाई काम जो हो गया तो अब जी के क्या करेंगे। कद खलत मिन कबल है रसुल, तो लिहाजा दुआ ये करे अपने लिए भी, काम करके मरे। मरना तो है, कोई रोक सकता है? कोई वक्त के पहिए को पीछे घुमा सकता है? नहीं घुमा सकता। फिर आप देखिए यहाँ नबी के लिए दो लफ्ज आए हैं, माता और कुतीला। माता कहते हैं तबई मौत, मौत से, और कुतीला मारा जाना यानी कत्ल करना। क्या ये लफ्ज बुरे हैं? कुछ लोग नबी की मौत के लफ्ज को गुस्ताही कहते हैं कि जी नबी फौत हो चुके। नहीं, वो क्या कहते हैं, वो पर्दा किए हुए हैं। ये बताइए कि अगर नफी के लिए लफ्ज मौत कहना नबी की गुस्ताखी होती तो अल्लाह ताला ने तो ये कह दिया। और आप तो देखिए कुतिला का लफ्ज तो शोहदा के लिए आगे भी आएगा, पीछे भी पढ़ चुके हैं, अल्लज़ीना कुतिलु फी सबीलिल्लाह, शोहदा के लिए कुतिला का लफ्ज है। तो यहाँ अकीदे की इस्लाह कर लीजिए कि नबी के लिए लफ्ज फौत या उनकी मौत का लफ्ज बोलना नबी की गुस्ताखी नहीं है, मौत हकीकत है। इसमें क्या बुरी बात है? अल्लाह की खुदाई, अल्लाह ताला के वजूद और उसके हर चीज पे कादिर होने की दलील मिलती है। फिर आप देखिए कि यहाँ कद खलत मिन कबल है रसूल से एक और गलती लगी लोगों को, और वो क्या कहते हैं, देखो अल्लाह कह रहा है कि सारे आपसे पहले रसूल फौत हो गए तो ईसा भी फौत हो चुके हैं, बल्कि मुसलमानों में एक ग्रोह जो अपने आप को कहता मुसलमान है, पीछे आपसे बात हुई इस पे, आगे सूरह मायदा में फिर हो सकती है कि वो कहते हैं नहीं कि जी हजरत ईसा तो फौत हो चुके हैं और मसीले मसीह आ चुके हैं, वो भी आगे। तो आप लफ्ज़ देखिए जरा इस आयत के अंदर उसका जवाब आपको मिला। खलत, खलत कहते हैं खाली होना, ता इसमें मुअन्नस की है, वो ये जो आगे ना इज़ा खलऊ का लफ्ज़ पीछे सूरह बकरा में गुजरा, जब वो खाली होते हैं, अलग होते हैं। अगर यहाँ होता कद मातम मिन कबल है रसुल तो मानी क्या होता कि आपसे पहले जितने रसूल आए थे वो फौत हो चुके हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत नहीं हुए हुए, ये हमारा ईमान है। तो माता की जगह खलत यानी गुजर चुके, पीछे भी हम आए थे 119 सूरह बकरा में भी ये बात पढ़ चुके। तो कहने का मतलब ये है कि बाज लोग कुरान से ही तावीलात ले लेते हैं, कभी इधर की बातें को उधर की। और एक और अल्लाह ताला ने इसमें बात बता दी, जो जाता है शौक से जाए वो मैं ही यनकलिब, अल्लाह का क्या बिगड़ेगा, मैं जो छोड़ दूंगी अल्लाह का काम तो कोई नाउसुबिल्ला अल्लाह को नुकसान होगा, मेरे करने से अल्लाह को फायदा कोई नहीं, मेरे छोड़ने से उसको नुकसान कोई नहीं, हाँ नुकसान मेरा अपना है। मैदान जंग से फिरना کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنی جان بچا کر اسلام کی جان لے لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسے کام نہ کرو، آج تم ادھر سے پھرو گے، کل تمہارا دوسری طرف سے پھرنا آسان ہو جائے گا. دیکھیے ایک کام اپنے لیے عمل کا لکھ لیجئے، ایک کام چھوڑیں گے آپ نیکی کا صرف. مثلا آپ صبح 9:45 یہاں آتے تھے کلاس کے وقت میں، آپ صرف اتنا چھوڑ دیں کہ میں بس 9:45 نہیں، میں 11 آؤں گی تفسیر کے وقت میں. آپ نے یہ جو 1.25 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ چھوڑا ہے نا، نیکسٹ اسٹیپ پہ پھر آپ 11 بھی چھوڑ دیں گے. گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے بندے کی. اس لیے اپنے آپ کو ہر دن چیک کیا کریں کہ میری کیا چیز کم ہو رہی ہے. اس لیے اس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ تمہارے سامنے ایسے حالات ہوں تو تم اس طرح نہ کرنا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسے شاکروں میں کر دے. کون ہے یہاں شاکرین؟ جو مشکل گھڑیوں میں بھی دین پر جمے رہے، دین کے کام کرتے رہے. اور اصل میں تو یہ ذہن سازی تھی آپ کی حقیقی موت کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین انسانوں سے نہیں چلتا، لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے. ہم سب اس وقت اپنے اپنے حصے کا ڈول ڈال رہے ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے، اللہ کا کام رہے گا، اللہ کا دین رہے گا. شکر گزار وہی بندے ہیں جنہوں نے نعمت اسلام کی قدر کی، جان تک کی قربانی دے دی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی بھی اور انسان کوئی بھی دوسرا ہو اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا. آیت نمبر 145 میں اسی مضمون کو مزید کھولا جا رہا ہے.